تفسیر سورة المائدہ آیت 87، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. میری پیاری بہنوں، آپ اس آیت پر غور کریں. سب سے پہلی بات جو بتائی کہ اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے. اہل ایمان کون ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان جو ہے یہ محض ایک دعوے کا نام نہیں ہے، یہ محض ایک اعلان کا نام نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں ایمان لایا ہوں، تو اس کے کہنے سے ایمان مکمل نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ وہی چیزیں نہ کرنے لگے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور ایمان جو ہے ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا ارادہ ہے، اور ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی سوچوں پر، اس کے شعور اور لا شعور پر جو ہے وہ اثر کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ہڈیوں اور اس کے خون کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ گردش کرتا ہے. تو ایمان دراصل جو ہے وہ تبدیلی کا نام ہے، ایک انقلاب کا نام ہے، کچھ کر گزرنے کا نام ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہاں پہ دو باتیں کہی جا رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، دوسری بات، اور حد سے تجاوز نہ کرو. تو پہلے جو ہے وہ آیت کے اس حصے کو دیکھتے ہیں کہ جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو سے کیا مراد ہے. کسی حلال چیز کو حرام کرنے کے تین درجے ہیں. نمبر ایک، کسی چیز کو عقیدتاً حرام سمجھنا. نمبر دو، قولاً اپنے اوپر حرام سمجھنا. نمبر تین، جو ہے وہ عملاً ہمیشہ کے لیے کسی حلال چیز کو چھوڑ دینے کا عزم کرنا. اب آپ دیکھیے کہ حلال چیزیں جو ہیں جو حرام لوگ کر لیتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین رہنمائی ملتی ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ بعض صحابہ کے اندر بھی یہ رجحان پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کرنے لگے. کیونکہ بعض لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نفس اور جسم کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو نیکی میں، تزکیہ اور روحانی ترقی میں رکاوٹ بنے گی. تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے نفس کو دنیاوی لذتوں سے محروم کر دینا، دنیا کے ساز و سامان سے، سامان زیست سے تعلق توڑ دینا، اس کو وہ نیکی سمجھتے ہیں اور خدا کے تقرب کا ذریعہ. جب صحابہ میں یہ سوچ پیدا ہونے لگی اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بعض صحابیوں نے عہد کر لیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے، راتوں کو بستر پر نہیں سوئیں گے، بلکہ جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کریں گے. نمبر دو، گوشت اور چکنائی کا استعمال نہیں کریں گے. نمبر تین، عورتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتا چلا تو آپ نے خطبہ دیا، فرمایا، مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی. مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت کھاتا بھی ہوں اور گھی بھی، پس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے. پھر فرمایا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانوں کو اور خوشبو اور نیند اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے؟ میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ. میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے اور نہ گوشہ گیری اور عزلت نشینی ہے. ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے، رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں. اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو اور زکات دو اور رمضان کے روزے رکھو. تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی, اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی. یہ انہی کے بقایا ہیں جو تم کو صومعوں اور خانقاہوں میں نظر آتے ہیں. اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے اور دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عمل کا پتا چلا تو آپ نے ان کو بلا کر حکم دیا کہ ابھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں. آپ نے فرمایا روزہ توڑ دو اور جاؤ. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون نے بھی شکایت کی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے مقدمے کی سماعت کروائی اور پھر فیصلہ کروایا کہ اس خاتون کے شوہر کو 3 راتوں کے لیے اختیار ہے کہ جتنی چاہیں عبادت کریں, مگر چوتھی رات لازماً ان کی بیوی کا حق ہے. تو کیا فرمایا کہ جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ قسم کھا کر کسی چیز کو اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر لیتے ہیں. مثلاً فلاں چیز نہیں کھاؤں گی, یا فلاں کام نہیں کروں گی, فلاں سے نہیں ملوں گی, فلاں کی خوشی غمی میں شرکت نہیں کروں گی. تو بعض لوگ ویسے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا, اور بعض لوگ جو ہے وہ تاکید کے لیے قسم بھی کھا لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حرام کرنا ہے اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتی ہیں کہ جیسے جسم کو جتنی غذا کی ضرورت ہے اس سے کوئی بہت کم کھائے یا کم کھائے, یا جو پسندیدہ چیزیں ہیں اس سے پرہیز کرے. یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس سے جو ہے جب جسم کمزور ہوتا ہے تو انسان فرائض جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. جیسے بہت سی جو ہے وہ لوگ یا یوتھ یا آج کل یہ رواج چل پڑا ہے جیسے ڈائٹنگ کرنا, تو اگر جو ہے وہ سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنے کھانے پینے کے آداب مقرر کر لیے جائیں اور اس پر عمل کیا جائے تو پھر اس کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو فرمایا کہ جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو. خود اللہ رب العزت نے سورت التحریم آیت 1 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی, آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے؟ تو شرعی نقطۂ نظر سے تمام پاکیزہ چیزیں انسان کے لیے مباح اور حلال ہیں, سوائے ان کے جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا. اور اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ساری چیزیں حلال ہیں سوائے چند کے جو کہ حرام ہیں, اور اللہ تعالی نے جو حرام ہیں ان کے بارے میں رہنمائی کر دی, بتا دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں اور وہ چند ایک ہیں, باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں. تو فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو. پھر جو ہے وہ دوسری بات فرمائی, ولا تعتدوا, اور حد سے تجاوز نہ کرو. تجاوز کرنے کے معنی یہ ہیں, نمبر 1 حلال کو حرام کرنا, اللہ کی ٹھہرائی ہوئی پاک چیزوں سے اس طرح پرہیز کرنا گویا وہ ناپاک ہیں, یہ ایک زیادتی ہے. پھر پاک چیزوں کے استعمال میں اسراف بھی زیادتی ہے. مثلا کیسے اسراف کیا جائے؟ کہ ضرورت سے زیادہ اپنی ذات پر خرچ کرنا یا دوسروں پر خرچ کرنا, بہت زیادہ کھانا, بہت زیادہ پینا. کیونکہ زیادہ کھانے پینے یا زیادہ سونے سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے, انسان بیمار ہوتا ہے, فرائض کی ادائیگی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر جو ہے وہ یہ جو ہے ولا تعتدوا, اس کی ایک اور شکل ہے اور وہ یہ کہ کوئی چیز تو حلال ہے مگر انسان کمائی کے ذریعے اسے حرام بنا لے. مثلا چوری, ڈاکہ, غصب, خیانت, سود, جو ان ناجائز طریقوں سے مال حاصل کیا جائے گا تو کیا ہے کہ وہ پھر حرام ہو جائے گا. तो यहाँ पे ये ज्यादती करना जो है इसे मना किया गया है कि ज्यादती ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मोतदीन, बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। तो तातदू और मोतदीन, इसका रूट ऐन दाल वो है और इसके मानी है दुश्मनी के, ज्यादती के। तो अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं करता। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, और खाओ मिम्मा उसमें से, और खाओ उसमें से रज़क़कुमुल्लाह जो अल्लाह ने रिस्क तुम्हें दिया है, हलालन तय्यिबा, हलाल और तय्यब। अब यहां पर जो है वो बताया जा रहा है कि जो हलाल और पाक रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से खाओ। दो बातें खास तौर पर कही, नंबर एक हलाल और नंबर दो पाक। तो इससे ये बात पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात को नापसंद करते हैं कि हराम माल जो है वो, या हराम चीजें जो है वो इस्तेमाल की जाए। तो हलाल भी होनी चाहिए और उसके साथ ही पाक भी होनी चाहिए। हलाल और पाक से फिर क्या मुराद है कि जैसे वो जानवर जो हलाल है, जैसे बकरी है, गाय है और मुर्गी है, भेड़ वगैरह, तो ये हैं तो हलाल, और तो इनको जिबा भी हलाल तरीके से किया जाए, यानी ये जबिया हलाल होना चाहिए। और दूसरी बात क्या पता चलती है कि जो भी जानवर या चीजें जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं उनका हलाल होना जरूरी है। फिर तैयब जो है इससे मुराद ये है कि उम्दा हो, पाक हो, गली सड़ी ना हो, और ऐसा ना हो कि किसी पर जो है वो अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। तो इस तरह भी जो है वो जो खाने पीने की चीजें हैं ये चीजें जो है वो हराम हो जाती हैं। तो फरमाया कि हलाल भी हो और उसके साथ जो है वो पाक भी हो। फिर फरमाया वत्तकुल्लाहल्लज़ी अन्तुम बिही मोमिनून, और उस अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। इसके मानी ये हैं कि हलाल पाक चीजों का सवाब समझकर छोड़ देना तकवा नहीं, बल्कि तकवा इसमें है कि इनको अल्लाह की नेमत समझकर इस्तेमाल किया जाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। अगर जैसे किसी चीज के खाने से जिस्मानी तौर पर नुकसान है, या ये कि कोई शख्स बीमार हो जाता है तो बीमारी की वजह से अगर किसी चीज को छोड़ देता है तो फिर उसे छोड़ने का गुनाह नहीं है, लेकिन जो है वो जानबूझकर हलाल चीजों को अपने ऊपर हराम कर लेना, बाज लोग बाज जो है वो खाने पीने की चीजों को अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, बाज लोग जो है जो अल्लाह ताला ने चीजें जो है वो हलाल रखी हैं जिंदगी के अंदर उनको अपने ऊपर जो है वो हराम कर लेते हैं। तो ये चीज जो है ना ये अल्लाह के यहाँ सख्त जो है वो नापसंद है, क्योंकि अहले मक्का जो थे वो हलाल चीजों को अपने ऊपर हराम कर लेते थे मुशरिकाना रस्मों की बुनियाद पर। यहाँ इससे जो है वो मना किया जा रहा है। फिर फरमाया ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग्वी फी अईमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक्कदतुमुल अईमान, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु, नहीं मुआखजा करेगा, नहीं गिरफ्त करेगा तुम्हारी अल्लाह, तो अल्लाह तुम पर गिरफ्त नहीं करता बिल्लग्वी, लग्व का मतलब होता है बे इरादा, फजूल, मोहमल, फी ईमानिकुम, तुम्हारी कस्मों में। तो जो फजूल कस्में, मोहमल कस्में तुम खा लेते हो उस पर अल्लाह तुम्हें नहीं पूछेगा, नहीं पकड़ेगा। तो ईमान जो है इसका रूट है या मीम नून, इसकी जमा है ईमान, बे इरादा, मोहमल कस्में जो तुम खा लेते हो इस पर अल्लाह तुम्हारी गिरफ्त नहीं करता। तो कस्मों की पहली किस्म पता चली जो लग्व कस्में हैं। دوسری قسم ہے وَلَكَيْنْ يُعَاخِذُكُمْ, اور وہ ضرور تمہیں جو ہے وہ پوچھے گا یا تمہاری گرفت کرے گا, بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ, جو تم جان بوجھ کر کھاتے ہو. عَقَّدْتُمْ, عَقَّدْتُمْ جو ہے اس کا روٹ ہے عین قاف دال اور عقدہ گرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو عَقَّدْتُمْ کا مطلب ہے جیسے گرہ باندھی سے مراد مضبوط قسمیں, پختہ قسمیں, تو ان قسموں پر اللہ تمہیں جو ہے وہ ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھی, وہ قسمیں جو تم جان بوجھ کر جو ہے وہ کھاتے ہو. تو یہاں پر قسموں کی دو قسمیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں, اور قسموں کی ایک اور قسم بھی ہے اور وہ ہے یمین غموس. غموس جو ہے ایسی قسم کو کہتے ہیں جو کہ ڈبو دینے والی ہے. جیسے ایک شخص نے جو ہے وہ کوئی کام کر لیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا ہے, جیسے بعض لوگ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں, کہا کہ طلاق طلاق, اور دو تین دفعہ طلاق دے چکے ہیں, لیکن اب کیا کرتے ہیں, اب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے طلاق نہیں دی تھی. تو یہ جھوٹی قسم جو ہے یہ سخت گناہ کبیرہ ہے, دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ یہ باعث جو ہے وہ وبال ہے اور عذاب ہے. تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس, ایسی قسم جو کہ انسان کو گناہ میں غرق کر دے, اللہ کے عذاب میں ڈبو دے, تو یمین غموس. دوسری قسم جو ہے جو کہ ایسی چھوٹی موٹی لوگ بلا ارادہ کھا لیتے ہیں, جیسے یمین لغو, یمین لغو. اور تیسری قسم ہے جو کہ یمین منعقدہ کہلاتی ہے, عقدتم الایمان سے یمین منعقدہ, اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ قسم کھا لینا. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یمین جو لغو ہے وہ کیسی ہیں. جیسے بعض لوگ تکیہ کلام کے طور پر جو ہے کہتے ہیں لا واللہ بلا واللہ, تو بعض اوقات بعض لوگ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں, تو یہ مہمل قسمیں ہوتی ہیں, عادتاً بعض لوگ کھاتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لفظ قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تکیہ کلام کے طور پر نیت سے نہیں کہتا, جیسے لا واللہ بلا واللہ. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانا ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے والد کبھی قسم نہیں توڑتے تھے, یہاں تک کہ اللہ نے کفارہ کی آیت نازل کر دی, اس وقت وہ کہنے لگے کہ جب میں قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف کرنا اچھا سمجھوں تو اللہ کی رخصت منظور کر کے وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اول تو قسم کھاتے ہی نہیں تھے, لیکن اگر سمجھتے تھے کہ جو ہے وہ جو قسم کھائی ہے اور اگر اس کو توڑ دوں تو اسی میں اچھائی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب قسموں کا کفارہ نازل کر دیا قسم توڑنے کا, تو پھر آپ اپنی قسم کو توڑ لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ پینے پر قسم کھا لی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رسول اللہ کی گرفت کی. سورۃ التحریم آیت 1. ایک صحابی نے ایک مرغی کو غلاظت میں چونچ مارتے دیکھ لیا تو آئندہ مرغی نہ کھانے پر قسم اٹھا لی. ایسی قسموں کو بھی توڑ کر ان کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ آگے جو ہے آیت 89 میں, اب آخری جو آیت کا حصہ, یہاں پہ قسم توڑنے کا کفارہ بتایا جا رہا ہے. فَكَفَّارَتُهُ, پھر اس کا کفارہ ہے. کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ, اور یہاں اس کے معنی ہے جو لغوی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, چھپا دینا. تو کفارہ کے لغوی معنی ہے وہ نیکی کا کام کرنا جو کسی پہلے سے کیے برے کام کا عوض بن کر اس کو ڈھانپ دے, اس کو ختم کر دے. کفارے کا مطلب کیا ہے؟ कि जो गुनाह किया, जो गलती की, अब उसका जो है कैसे अजाला हो। फरमाया, तो जो कसम खाई है ऐसी कसम तोड़ने का कफारा ये है, इत्आमु अशरते मसाकीना, के 10 मिसकीनों को खाना खिलाया जाए। यहाँ पे इत्आम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इत्आम के मानी अरबी लुगत के एतबार से खाना खिलाने के भी होते हैं और किसी को खाना देने के भी। तो कफारे के तौर पर 10 मिसकीनों की दावत करके उनको खाना खिला दिया जाए या फिर उनको खाना दे दिया जाए। कैसा खाना देना है जो 10 मिसकीनों को देना है? मिन औसती मा तुतइमून अहलीकुम, तो 10 मिसकीनों को वो औस दर्जे का खाना खिलाना है। मा तुतइमूना, जो तुम खिलाते हो, अहलीकुम अपने घर वालों को, तो जैसा अपने घर में खाते हो, तुम्हारे बीवी बच्चे खाते हैं या तुम्हारा शोहर और जो घर वाले खाते हैं, तो तुम अब क्या करो कि उस दरमियाने दर्जे का खाना 10 मिसकीनों को खिला दो, या फिर औ किस्वातुहुम, या उन्हें कपड़े पहना दो। काफ सीन वो कसू का मतलब होता है कपड़ा पहनाना, तो या उन्हें कपड़ा पहना दो। औ किस्वातुहुम, कपड़ा पहनाना, तो 10 मिसकीनों को कपड़ा पहना दिया जाए, कपड़े दे दिए जाएं या पहना दिए जाएं, या फिर औ तहरीरु रकबा, या एक गर्दन का आजाद करना। तो रकबा का लफ्ज जो है ये गर्दन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मुराद है एक लौंडी या गुलाम को आजाद किया जाए। फमलम यजिद फासियामु सलासते अयाम, फमलम यजिद, और जो ना पाए, जिसको मुयस्सर ना हो कि वो 10 मिसकीनों को खाना खिलाए, या ये कि वो 10 लोगों मिसकीनों को जो है वो कपड़े पहनाए, या किसी गुलाम को आजाद कराए। जैसे आजकल लौंडी या गुलाम को आजाद करना अब ये मुमकिन ही नहीं है, और कोई इतना गरीब है कि वो 10 मिसकीनों को खाना भी नहीं खिला सकता और कपड़ा भी नहीं पहना सकता, तो अब वो क्या करे? तो फसियामु सलासते अयाम, तो वो 3 दिन के रोजे रखे। फसियामु इसका रूट है स्वाद वो मीम सौम, रोजा रखना। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ्तुम, ये कफारा है। कफारा के मानी क्या है कि ये जो है ये अमल ये माफ करवा देगा, ये ढांप लेगा तुम्हारे गुनाहों को। अईमानेकुम, जो तुमने कसमें खाई हैं, तो ये तुम्हारी कसमों का कफारा है। इजा हलफ तुम, जब तुम कसम खाकर तोड़ दो, जब तुमने जानबूझकर कसम खाई और उसे तोड़ दिया, और अब उसका कफारा क्या है ये जो ऊपर बताया गया। वाहफजू अईमानकुम, अपनी कस्मों की हिफाजत करो। अपनी कस्मों की हिफाजत करने के मानी ये हैं कि अव्वल तो कसम खानी नहीं चाहिए। बाज लोग जो है बात बात पर जो है वो कसम खाते हैं, तो कसम खाने के मामले में मोहतात रहना चाहिए, बिला जरूरत कसम नहीं खानी चाहिए। फिर दूसरी बात ये पता चलती है कि अगर कसम खाई भी जाए तो फिर कसम को पूरा किया जाए। तीसरी बात ये पता चलती है कि अगर कोई कसम खाने के बाद तोड़ दे तो उसका कफारा अदा करे। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं वा फजू अईमानकुम, कि तुम अपनी कसमों की हिफाजत करो। कजालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए वाजे करता है शायद कि तुम शुक्र अदा करो। अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि ये शरीयत और जो हदायत है, ये जो रहनुमाई है, ये अल्लाह ताला का दरअसल अपने बंदों पर एहसान है। एहसान क्या है कि जैसे अगर किसी ने कसम खाई है और अब वो कसम जो है वो गलत है और अब उसको तोड़ना चाहता है, तो अल्लाह ताला ने इतनी तफसील से ये सारे अहकाम बयान किए हैं, जैसे गैर इरादी कसमें, जानबूझकर जो कसमें खाई हैं, जो कुछ भी है, ये सारे मामलात अल्लाह ताला ने तफसीली बयान कर दिए ताकि लोग जो है मुश्किल में ना पड़े। तो ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का एहसान है, يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, شاید کہ تم اللہ کے اس احسان کو مانو. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اب آپ دیکھیے کہ پھر اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے چار چیزوں کے قطعی حرام ہونے کا اعلان کیا ہے. انما الخمر, سب سے پہلے کہا کہ بے شک شراب, والمیسر اور جوا, والانصاب اور یہ آستانے بت, والازلام اور پانسے, چار چیزوں کو کا ذکر کر کے فرمایا. نمبر ایک, رجس من عمل الشیطانی, یہ سب گندے شیطانی کام ہیں. نمبر دو, فاجتنبوہ, تم ان سے پرہیز کرو, لعلکم تفلحون, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے کیا کہا, سب سے پہلے الخمر شراب کا ذکر کیا گیا, خا میم را, اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپانا. خمار ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی چیز چھپائی جائے, اوڑھنی کو بھی کہتے ہیں دوپٹے کو جو سر کو چھپاتا ہے. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, تو اسی طرح شراب جو ہے وہ کیا ہے, الخمر ہے, نشہ, وہ عقل کو چھپا لیتا ہے, ڈھانپ دیتا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شراب جو ہے نا اس سے تم بچو. شراب کی حرمت کے سلسلے میں آپ پہلے دو حکم پڑھ چکی ہیں, سورۃ البقرہ آیت 219 اور سورۃ نساء آیت 43. ان دونوں احکامات میں آپ نے یہ بات پڑھی. پہلے یہ کہا کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. پھر دوسرے سورۃ نساء میں یہ کہا کہ جب تم نماز کے پڑھنے لگو تو شراب کے قریب مت جاؤ. پھر اس کے بعد جو ہے یہ تیسرا حکم جو ہے وہ نازل ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے دعا کی, یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم نازل کر. تو سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہوئی, یسألونک عن الخمر والمیسر, سورۃ البقرہ آیت 219 نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر جب یہ آیت سنائی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر دعا کی, یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی حکم نازل کر. تو سورۃ نساء کی یہ آیت نازل ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, سورۃ نساء آیت 43. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر جب یہ آیت پڑھی گئی آپ نے پھر دعا کی, یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان نازل کر, تو سورۃ مائدہ کی آیت نازل ہو گئی. یہاں یہ آیت نمبر 90 سے لے کر پھر آیت نمبر 91, اسے ترمذی بخاری نے روایت کیا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سورۃ مائدہ کی آیات پڑھ کر سنائی گئیں تو انہوں نے کہا, انتہینا یا ربنا, انتہینا یا ربنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے, لوگوں شراب حرام ہوئی. شراب پانچ چیزوں سے بنا کرتی ہے, انگور, کھجور, شہد, گیہوں اور جو سے, اور جس مشروب سے عقل میں فطور آئے وہ خمر ہے, وہ شراب ہے. اسی طرح یہ تیسری حدیث بھی آپ سنیے, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا اور ان دنے شراب گندی کھجوروں ہی کی تھی. میں ابو طلحہ, ابو عبیدہ, ابی بن قاب, ابو ایوب, ابو دجانہ, سہیل بن بیدا اور اپنے چچاؤں اور کسی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کھڑا ہوا شراب پلا رہا تھا اور میں ان سب سے چھوٹا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ شراب حرام ہو گئی. ابو طلحہ نے مجھے کہا, باہر جا کر سنو. میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے, سن لو شراب حرام ہو گئی. اتنے میں ایک اور آدمی آیا, اس نے پوچھا, کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگا, کیسی خبر؟ اس نے کہا, شراب حرام ہو گئی ہے. अबू तलहा ने मुझे कहा, बाहर जाकर मटका तोड़ दो और शराब बहा दो। मैं बाहर निकला और सिल के एक बट्टे को उठाकर मटके के फेंदे में मारा, मटका टूट गया और शराब बह गई। इस दिन मदीना के गली कूचों में शराब बह रही थी। इस शख्स ने यह खबर सुनने के बाद लोगों ने इस शख्स से यह खबर सुनने के बाद कि शराब हराम कर दी गई, लोगों ने ना इसकी तस्दीक की और ना ही फिर कभी शराब पी। इसे बुखारी ने रवायत किया है। इससे क्या बात पता चलती है कि लोग जो थे वो फौरन शराब पीने से जो है वो रुक गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अंगूर उतरने के जमाने में अंगूर स्टॉक करके रखे ताकि उसे शराब बनाने वालों के हाथ फरोख्त करे, इसने दीदा दानिश्ता आग में जाने की प्लानिंग की। फिर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या शराब बतौर दवा इस्तेमाल हो सकती है? आपने फरमाया, शराब तो खुद बीमारी है, ये क्या इलाज करेगी? इसे तिर्मिजी ने रवायत किया है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि हर नशा आवर चीज हराम है। तो इस सिलसिले में आप उसूली बात याद रखें कि शराब जो है इसकी तारीफ क्या है। अलखमरु मा खामर अल अक्ल, हर वो चीज जो अकल को ढांप ले, और कुल्लो शराबिन अस्करफा हुआ हराम, हर वो मशरूब जो नशा पैदा करे वो हराम है। और ये हजरत उमर रजी अल्लाह ने शराब की तारीफ बताई कि अल खमरु मा खामर अल अक्ल, और आपने ये उसूल मुकरर कर दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मा अस्करा कसीरहू फकलीलहू हराम, जिस चीज की कसीर मिकदार नशा पैदा करे इसकी थोड़ी मिकदार भी हराम है। इसके मानी क्या है कि जिस चीज का पूरा एक गिलास नशा पैदा करता हो, इसका एक चुल्लू पीना भी, एक घूंट पीना भी हराम है। तो शराब जो है वो हराम कर दी गई। अब आप देखिए कि एडिक्शन रिसर्च फाउंडेशन ओंटेरियो, इनकी रिसर्च के मुताबिक कनाडा में सालाना 12 बिलियन डॉलर अल्कोहल शराब को खरीदने में खर्च होते हैं और तकरीबन 7.5 बिलियन डॉलर अल्कोहल एब्यूज पर खर्च होते हैं। इसमें जो है वो लॉ एनफोर्समेंट, एक्सीडेंट, हेल्थ केयर, ये सब चीजें शामिल हैं। और आप देखें कि जो शराब है, इस रिसर्च में इसके बारे में जो चीजें सामने आती हैं कि फौरी असरात क्या होता है, कि लोग जो है वो उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है और ब्लैकआउट फील करते हैं, दिमाग काम करना छोड़ देता है, बहुत टाकटिव हो जाते हैं, शाय नहीं करते, और बेहोशी की सी कैफियत हो जाती है, लड़खड़ाने लगते हैं, ज्यादा पिए तो सर दर्द होता है, मतली, उल्टी, हत्ता के मौत भी वाकया हो सकती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, फिर डे ड्रीमिंग, लीवर की बीमारी, इसी तरह हमल के दौरान जो है पीते हैं तो बच्चे पर असर होता है, स्टमक, गले का कैंसर, हार्मोन सेक्स में कमी आ जाती है, और बाज़ औक़ात इसके ज्यादा इस्तेमाल से औलाद की नेमत से भी लोग महरूम हो जाते हैं, या फिर जो औलाद है वो जो है वो बच्चा जो है उस पर उसके नेगेटिव असर आते हैं। और इसमें जो है ये शराब का जो पीना है, अल्कोहल का जो इस्तेमाल है, इसमें यूथ में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा है, यूथ में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। और आप देखें कि अगर आप में से किसी ने लाइसेंस लिया हो तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो रिटन एग्जाम होता है, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में, इसमें काफी सवाल इस सिलसिले में होते हैं कि अल्कोहल के बारे में, कि वो पी भी नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरह जो है वो शराब के पीने से जो है वो एक्सीडेंट, कत्ल, खुदकुशी, ड्राइविंग एक्सीडेंट, इसी तरह सेक्स एब्यूज और इस तरह की चीजें जो है वो आम होती हैं। मैं आपको एक मिसाल भी बताती हूँ कि अमराव अल कैस ये बड़ा मशहूर जमाना जाहिलियत का शायर था। इसको अपने बाप के कत्ल की खबर मिली, तो उस वक्त वो शराब की महफिल में बैठा हुआ शराब पीने पिलाने में मसरूफ था। ये खौफनाक और बड़ी ही दर्दनाक अलमनाक खबर जब उसने सुनी, फरमाया अल यौमा खमरु व गदन अम्र, अल यौमा खमर व गदन अम्र, आज तो शराब है इसका शगल जारी है, कल सोचेंगे कि क्या करना है। तो शराब क्या करती है, अकल को मऊफ कर देती है, पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। फिर आप देखें कि शराब जो है आखिर लोग पीते क्यों हैं, इसकी क्या वजह है, इसकी कुछ वजूहात जो है वो रिसर्च से एडिक्शन रिसर्च फाउंडेशन ओंटेरियो ने जो है वो सामने रखी है। नंबर एक के पीयर प्रेशर, नंबर दो खुशी हासिल करने के लिए कि वक्ती तौर पर सारे गमों से निजात मिल जाए, नंबर तीन जब लोग बोर होते हैं, जो आज के दौर की बीमारी है बोरिंग, तो कुछ करना चाहिए। फिर इसके साथ ही जो है वो कॉन्फिडेंट होने के लिए, फिर सर्दी का मुकाबला करने के लिए तजस्सुस, पार्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कूल बनने के लिए, फिर जैसे कोई काम नहीं हो रहा फेलियर की तरफ जा रहे हैं तो अपने आप को एस्केप करने के लिए लोग जो है उसका ड्रग्स का अल्कोहल का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शराब से कैसे बचा जाए। अच्छा, शराब से बचने के लिए मैं आपको अमेरिका की मिसाल देती हूं, कितना तालीम याफ्ता है अमेरिका 1919 में। 1919 में जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने एक कानून पास किया जिसमें अमेरिका में शराब हराम कर दी गई। इस कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए पूरी अमेरिका की मशीनरी हरकत में आ गई, बहरी बेड़े में फौज मुतय्यन कर दी गई ताकि लोग जो है शराब जो है उससे आ ना सके। इसी तरह जो फिजाइया था उसमें भी निगरानी का काम किया गया, रेडियो अखबारात रसाले किताबें और बहुत से जो है वो पंफलेट्स के जरिए जो है वो शराब की मुजम्मत की गई कि शराब ठीक चीज नहीं है। बहुत ज्यादा इन्होंने इसके लिए लिटरेचर तैयार किया। इसके अलावा उन्होंने शराब से नफरत दिलाने के लिए तकरीरें की, स्पीचेस, फिर तस्वीरें छापी सिनेमाओं में, ये जो फिल्म है जहां पे लोग देखते हैं वहां पे बहुत सी मूवीज तैयार की गई, लोगों को दिखाई गई। 14 ईयर्स, पूरे 14 साल जो है ये मुहिम चलाई गई, पूरी एक प्रोपेगंडा था, एक मुहिम थी कि शराब इस्तेमाल नहीं करनी और ये अच्छी चीज नहीं है। तो मीडिया, किताबें, फौज, हर हर मुमकिन जो है वो चीज का इस्तेमाल करके अमेरिका की हुकूमत ने करोड़ों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च किए कि लोग शराब का इस्तेमाल ना करें, और अगर कोई करता था तो उसको जुर्माने किए जाते उन पर। 300 के करीब लोग जो थे वो मर भी गए इस तरह, और उनको जेल में डाला जाता, उन पर जुल्म किया जाता। और लेकिन ये सारी कोशिशें करने के बावजूद जो था अमरीकी मुआशरे से शराब की मोहब्बत कम ना हुई बल्कि इजाफा ही हुआ, क्योंकि वो चोरी छुपे जो थे वो शराब का इस्तेमाल करने लगे और कानून का मजाक उड़ाने लगे। आखिर हुकूमत ने मजबूर होकर 1933 में, 1933 में, फिर ये जो उन्होंने कहा था ना कि शराब जो है ममनू है, इसके कानून को मनसूख कर दिया। तो ये किसकी फतह थी, ये अमरीकी मुआशरे की आदत की फतह थी कि अमरीकी मुआशरे की जो आदत थी, गवर्नमेंट का जो कानून था वो नाकाम हो गया। आइए देखते हैं कि अरब का मुआशरा जो कि कई सालों से शराब की लत में जो था वो डूबा हुआ था, तो उन्होंने जो है वो शराब जो है वो कैसे छोड़ी, कैसे इस बीमारी पर जो है वो काबू पाया। तो दरअसल ये उनके पास ईमान की दौलत थी, ईमान। और ईमान जो है जब किसी की रगो पैर में, उसके दिल में, दिमाग में, उसकी हड्डियों में, उसके खून में जो है वो सरायत कर जाता है, तो फिर वो क्या पुकार उठते हैं, इंतहैना या रब्बना इंतहैना। असल बात यह है कि ईमान जो है, जब कोई शख्स सच्चा ईमान लाता है तो फिर उसके लिए हराम चीजों को छोड़ना मुश्किल नहीं होता, और अल्लाह की अताअत करना जो है वो उसकी जिंदगी की सबसे अहम खूबी बन जाता है। तो इस वक्त भी शराब पर काबू पाने के लिए क्या करना जरूरी है कि एक तरफ बताया जाए कि इसके नुकसान क्या हैं, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म, और तीसरी तरफ सोहबते सवाले, और चौथी तरफ जो है वो ईमान को मजबूत किया जाए। दूसरी चीज है वल मैसिर। मैसिर का जो लफ्ज है ये या सीन रा से निकला है, युस्र, और युस्र जो है इसके मानी है आसानी के। ये उसर की जिद है, आसानी और सहूलत के इसके मानी है, और इससे मुराद है जुआ, लॉटरी, क्योंकि इसमें जो जो कुछ भी मिलता है वो बगैर किसी मेहनत के जो है वो हासिल होता है। तो अब यहां पर जो है वो यूसर के बारे में कहा गया कि ये चीज भी जो है ये ठीक नहीं है। तो दौलत, कसरत से दौलत जो है वो मुफ्त और आसानी से हाथ लग जाती है। जुआ, कमारबाजी, ये शरण और कानूनन हराम है। इसमें लॉटरी, रेफल टिकट, इनामी बांड, रेस कोर्स, बीमा की बाज शक्लें, चौसर और शतरंज वगैरह भी जो है वो इसमें आ जाते हैं। कहा कि वल मैसिर, ये जो कजिनो वगैरह होते हैं ये भी इसमें जो है वो ये खेले जाते हैं। वल अनसाब, नून स्वाद बा नस्ब, नस्ब जो है ये बुत बुत को भी कहते हैं, और ऐसी जगहों को जहां पे बुत वगैरह जो है वो नसब किए हुए होते हैं और लोग वहां पे जाके नजरे न्याज चढ़ाते हैं। तो अल्लाह ताला ने बुत फरोशी, बुत परस्ती, बुत गरी, इन सब चीजों को हराम किया है। तो फरमाया कि वल अनसाब, तो इससे मुराद क्या है कि यहां पे आप देखें अनसाब जो नुसुब की जमा है, तो ऐसी चीज को नुसुब कहा जाता है जो इबादत के लिए खड़ी की गई हो, खा बुत हो या कोई दरख्त हो या पत्थर, तो इसको भी जो है वो हराम कर दिया गया। तीसरी चीज है वल अजलाम। वल अजलाम इसका रूट है जे लाम मीम, ये जल्म की जमा है, और उन तीरों को कहते हैं जिन पर कुरा अंदाजी करके अरब में जुआ खेलने की रस्म जो थी वो जारी थी। तो चौथी चीज क्या है कि कुर्रा के तीरों के जरिए किस्मत मालूम करने के अमल को भी हराम करार दिया गया। अब आप देखिए कि इस आयत में हराम का लफ्ज जो है वो नहीं मिलता, लेकिन दो जो बातें कही गई हैं इससे पता चलता है कि ये हराम है। पहली चीज कही रिजसुम मिन अमाली शैतान, रिज्स कहा गया। अरबी जबान में रे जीम सीन या रे जीम जे तकरीबन एक ही मानी में इस्तेमाल होते हैं। ऐसी गंदी चीज को कहते हैं जिससे इंसान की तबीयत में घिन और नफरत पैदा हो। तो ये चारों चीजें जो हैं, अगर इंसान जरा भी अक्ल सलीम रखता हो, तबाय सलीम रखता हो, तो इन चीजों से उसको घिन होगी और नफरत होगी। तो फरमाया कि ये जो अमल है ये सब गंदे शैतानी अमल है। रिजुम मिन अमल शैतान से और क्या मुराद है कि ये शैतानी हरबे हैं, ये उसकी इजादात हैं, और शैतान क्या चाहता है कि बनी आदम को सिराते मुस्तकीम से बहका दे, सिराते मुस्तकीम से हटा दे। तो शैतानी अमल है ये, निजस है, ये नापाक है, ये नाजायज है। फजतने बूहू, और अल्लाह ने शैतानी कामों से जो है वो इज्तनाब का हुक्म दे दिया। कहा कि क्या करो कि इनसे जो है वो परहेज करो, क्योंकि शैतान तो चाहता है कि आप जो है वो मोहलक गढ़ों के अंदर गिर जाए। तो इनसे बचो, इनसे परहेज करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम्हें फला नसीब हो जाए। फला नसीब होने से मुराद क्या है कि तुम जो है वो कामयाब हो जाओ। फिर आयत नंबर 91 में फरमाया इन्नमा युरीदु शैतान वही यूकिया बैनकुमुल अदावत बल बग انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. اب فرمایا کہ بے شک شیطان یہ چاہتا ہے، الشیطان یعنی شیطان یہ ارادہ رکھتا ہے، ان یوقیا کے معنی ہے کہ وہ ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، نمبر ایک العداوت دشمنی، والبغضاء نمبر دو رنجش، بغض ڈال دے، فلخمری والمیسری شراب اور جوئے کے ذریعے، ویسدکم عن ذکر اللہ اور اللہ کے ذکر سے روک دے، وعن الصلاة اور نماز سے، فہل انتم منتہون کیا تم جو ہے وہ ان چیزوں سے باز آؤ گے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے اس کا وار کیا ہے کہ تمہارے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کرے، تو تم آپس میں جو ہے وہ لڑتے جھگڑتے رہو. اور یہ کون چیز پیدا کرتی ہے؟ خمر بھی اور میسر بھی، گیملنگ جوا بھی اور پھر شراب بھی. تو ایک طرف جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑا یہ چیزیں پیدا کریں گی، نمبر دو وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور اللہ کے ذکر سے تمہیں روک دیں گی، نمبر تین وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے، تو نماز کا الگ سے ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ تمام عبادتوں کی روح ہے، تو اس لیے اللہ تعالی نے جو ہے وہ اللہ کے ذکر جو ہے اس کا الگ سے ذکر کیا اور ساتھ ہی پھر نماز کا ذکر کیا، کیونکہ نماز جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. ذکر اللہ کی تمام اقسام میں اس کی اہمیت بدرجہ اولا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیں گی اور خاص طور پر نماز سے. فہل انتم منتہون کیا تم باز آتے ہو؟ منتہون کا روٹ ہے نون ہا یا، یعنی پھر تم رکتے ہو. تو یہی وہ آیت ہے کہ جس پر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انتہینا یا ربنا، کہ اے ہمارے رب ہم جو ہے وہ باز آ گئے. پھر اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے شراب پی رہے تھے کہ میں اٹھا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت تحریم خمر کا حکم نازل ہو چکا تھا اور آپ صحابہ کرام کو وہ آیت سنا رہے تھے. میں نے بھی آ کر اپنے ساتھیوں سے شراب کی حرمت کا ذکر کیا جو ابھی تک شراب پینے میں مصروف تھے، تو ان میں سے کوئی پیالہ پکڑ رہا تھا، کسی نے پیالہ ہونٹوں کو لگایا تھا اور کوئی دو چار گھونٹ پی چکا تھا، اور جب میں آیت پڑھتے پڑھتے اس جگہ پر پہنچا، فہل انتم منتہون تو کیا تم باز آؤ گے؟ سب بیک زبان پکار اٹھے، انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے. آپ ذرا اپنے آپ سے سوال پوچھیں، ذرا غور کریں کہ لمحے بھر میں سالوں سال کی ان کی جو بری عادت تھی شراب پینے کی، لمحے بھر میں وہ تبدیل ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گئے. تو اصل دولت کیا تھی؟ ایمان کی دولت. کہ ایمان جو ہے یہ ایک ایسی قوت ہے، یہ ایک ایسی دولت ہے کہ گندی سے گندی کوئی برائی کسی کے اندر کیوں نہ ہو، تو ایمان کے سہارے وہ اس برائی پر قابو پا سکتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرنا ہے. واطیع اللہ واطیع الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے، واطیع اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، واطیع الرسول اور اس کے رسول کی بات مانو، واحذروا اور اسے ڈرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم پھر جاؤ، اگر تم اطاعت نہ کرو، فَعْلَمُوا بس خوب جان لو، اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو بے شک رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ صاف صاف حکم جو ہے وہ پہنچا دیں. فرمایا کہ بے شک ہمارا رسول جو ہے اس کا کام ہے البلاغ المبین، کہ وہ صاف صاف جو ہے وہ پہنچا دیں. تو یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے کہ رسول کا کام پیغام پہنچانا ہے، اطاعت کرنا تمہارا فرض ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان پر کچھ بھی گناہ نہیں ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے. جناہن لیسا جناہن, تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو لیسا کو شروع سے لے لے اور جناہن کو یہاں پہ آخر سے لے لے. تو کن پر گناہ نہیں ہے؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ دراصل ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے شراب کے حرام ہونے کے بعد سبا صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے جبکہ وہ شراب پیتے رہے, تو ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ آیت نازل ہو گئی جس میں ان کے اس سوال کا جواب دے دیا گیا, ان کا شبہ جو تھا اس کو دور کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ اگر ایمان اور تقویٰ ہی پر ہوا ہے, اور چونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو جو پہلے انہوں نے کیا سو کیا. تو لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناہن, کہ ایسے وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے, تو انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا, فیما طعموا, جو کچھ انہوں نے پہلے کھایا پیا تھا, تو لیس جناہن, اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات, بشرطی کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے پرہیز کریں جو ان پر جو ہے وہ حرام کی گئی ہیں, اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے عمل کریں. تو کیا فرمایا؟ اذا متقوا, جبکہ انہوں نے پرہیز کیا, وآمنوا وعملوا الصالحات, اور ایمان لائے اور عمل صالح کیے. تو تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے جو ہے وہ رک جانا. تقوی کہتے ہیں اللہ کے حدود جو ہیں ان کی حفاظت کرنے کو. اور اصل تقویٰ کیا ہے؟ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہو. ثم تقوا آمنوا, اب پھر دوسری طرف دفعہ کہا, اب پھر تقویٰ کی دوسری دفعہ بات ہے کہ پھر انہوں نے پرہیز کیا اور وہ ایمان لائے. پھر تیسری دفعہ کہا ثم تقوا احسنوا, پھر پرہیز کیا اور نیک عمل کیے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ہی آیت میں جو ہے وہ تین دفعہ جو ہے وہ تقویٰ کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی دفعہ تقویٰ ایمان اور عمل صالح, کہ اصل میں وہ اللہ سے ڈرنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے جس کے ساتھ ایمان اور عمل صالح ہوں. پھر کہا کہ تقویٰ اور ایمان, تقویٰ اور ایمان کہ تبدیلی کا نام ہے. اللہ سے ڈرنا جو ہے دراصل تبدیلی کا نام ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں, اور پڑھتے ہیں جو چیزیں خریدتے ہیں اسے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کے اندر, لیکن عملی زندگی میں جو اللہ کی حدود ہیں اس کی پابندی نہیں کرتے. ایمان اور عمل صالح جو ہے ان کے اندر نہیں پایا جاتا, تو اس لیے بار بار اس کا ذکر آیا. اور آخری دفعہ تیسری دفعہ کا سمت تقو واحسن, کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے احکامات کو مانے, سمت تقو کہ اللہ کے احکامات کو مانے, وہ آسن اور خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں. تو احسان کی جو شرط لگائی گئی, تو احسان کا مدعا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حدود کی خلاف ورزی سے اس طرح بچے جس طرح اس سے بچنے کا حق ہے. وہ جو بھی کام کرے یہ سوچتے ہوئے کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اور اس طرح پھر اس کا تقویٰ جو ہے وہ اس کے اعمال کی اصل روح بن جاتی ہے, کہ وہ حدود الہی کو توڑنے سے پرہیز کرتا ہے. پھر اللہ کی حلال اور حرام جو چیزیں ہیں اس میں جو ہے وہ محتاط رہتا ہے. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ جو ہے وہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. آیت نمبر 94 میں, آیت 94 سے لے کر 97 تک یہ آیات جو ہیں حالت احرام میں شکار کے سلسلے میں نازل ہوئیں. اب آپ دیکھیے کہ حج اور عمرے کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ کعبہ پہنچنے سے پہلے میقات سے احرام باندھ لیا جاتا ہے, اور کعبے کے سفر تک راستے میں جانور چڑیاں وغیرہ سامنے آتی ہیں جس کا شکار کیا جا سکتا ہے. اور اہل عرب جو تھے, شکار جو تھا یہ ان کی معاش بھی تھا اور ان کی تفریح بھی تھی, اور یہ شکار کرنا بہت پسند کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ शिकार जो है वो आपके रास्ते में आपको नजर आ रहा है, जिस पर आपकी मुआश का जरिया भी है, आपको पसंद भी है और आपको वो करने से मना कर दिया जाए। और अरबी जुबान में कहावत है कि अल इंसानु हरीसुन अला मा मुनिया, कि इंसान जिस चीज से रोक दिया जाए इसका बड़ा हरीस होता है। तो अब यहाँ पर जो है वो अहले अरब का ही जो है वो सिर्फ इम्तहान नहीं लिया गया, बल्कि तमाम मुसलमानों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पाबंदी लगा दी कि एहराम बांधने के बाद शिकार करना जो है वो हराम है। ना इन आदमी खुद शिकार कर सकता है, ना किसी दूसरे को शिकार में मदद दे सकता है। और ये आयत जो है कहते हैं हुदैबिया के सफर में ये नाजिल हुई, जबकि मुसलमानों ने उमरे के इरादे से एहराम बांध रखा था। उस वक्त चिड़िया जानवर इधर उधर बड़ी घूम रहे थे, फिर रहे थे, और मुसलमान जो थे अपने तीर और नेजों से उनका शिकार भी कर सकते थे। अब मगर हुक्म क्या मिला कि तुम पर शिकार करना हराम कर दिया गया। और ये हुक्म जो है एहराम की हालत में है और हरम के इलाके में। तो असल मकसद क्या था जो है वो एहराम बांधने के बाद शिकार करना या शिकार करने में मदद देना, इन दोनों चीजों से जो मना कर दिया गया, इसका असल मकसद ये था कि अल्लाह जान ले कि कौन है जो अल्लाह को देखे बगैर अल्लाह से डरता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे असहाबे सब को कहा गया था कि हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़नी, और हफ्ते के दिन मछलियां उबर उबर कर ऊपर आती थी। तो यहाँ पे भी यही बात फरमाई गई, या युहल्लज़ीन आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। तो ईमान जो है ना, इसी की अल्लाह जो है वो आजमाइश किया करता है, इम्तहान लेता है। लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशय मिन सईदी, कि अल्लाह तुम्हें जरूर आजमाइश में डालेगा। लयब्लुवन्नकुम, अब यहाँ पे लाम लामे ताकीद है और नून भी ताकीद के लिए आया है कि अल्लाह जरूर बा जरूर जो है वो तुम्हें आजमाएगा। बा लाम या बा लाम वो ब्लो, या फिर बा लाम या, इसके मानी है कपड़े को पुराना करना। और जैसे कपड़ा तो इस्तेमाल से पुराना होता है ना, तो इसी तरह किसी इंसान को आजमाना, उसको बुलोना, उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है कि अल्लाह तुम्हें जरूर आजमाएगा। विषय मिन सईदी, साथ एक चीज के जो कि शिकार है, सईद शिकार को कहते हैं, और यही इसका रूट भी है। तनालहू ऐदीकुम व रिमाहुकुम, तनालहू इसका रूट है नून या लाम, इसके मानी है पहुंचना। तो पहुंचते हैं उस शिकार को ऐदीकुम तुम्हारे हाथ, व रिमाहुकुम और नेजे तुम्हारे। रा मीम हा, ये नेजे को कहते हैं, रिमाह इसकी जमा है, कि वो शिकार जो तुम्हारे हाथों और नेजों की जद में होगा, अल्लाह तुम्हें उसके जरिए आजमाएगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है वो एक तरफ हाथों का जिक्र किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो नेजों का जिक्र किया जा रहा है। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि हाथों से मुराद क्या है, जो करीब में होगा शिकार। करीब का मतलब भी इसका इससे जो है वो हो सकता है, और या छोटे जानवर जो आमतौर पर हाथ ही से पकड़ लिए जाते हैं। वरिमाहुकुम से मुराद जो है दूर के या बड़े जानवर जो तीर और नेजे से जो है वो शिकार किए जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों का जिक्र कर दिया गया कि जिस तरह भी हो, जिस भी चीज से शिकार करो, करीब का हो या दूर का, हाथों से करो या नेजों से और तीरों से करो, तो अल्लाह तुम्हें इससे आजमाएगा। लियालमल्लाहु, ताकि अल्लाह ये देख ले। अब यहाँ पे जो है वो ये जो इम्तहान है इसका मकसद बताया जा रहा है, मैं यखाफुहु बिलगैब, कि कौन तुम में से जो है वो अल्लाह से जो है वो गायबाना डरता है। तो ये है आजमाइश का असल मकसद कि गैब में रहते हुए अल्लाह से कौन डरता है। तो यहाँ पे मकसद है बंदों की वफादारी का इम्तहान, कि कौन जो है वो अल्लाह से बिन देखे डरते हैं। फमने तदाबाद अजालिका फलाहु अजाबुन अलीम, फिर जिसने इस तंबीह के बाद अल्लाह की मुकरर की हुई हद से तजावुज किया, फलाहु अजाबुन अलीम, तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। तो ए तदा, ये आपको बड़ा सा नजर आ रहा है लेकिन आप पहले पढ़ चुकी हैं, और इसका रूट है ऐन दाल वो अदू। तो दुश्मनी ज्यादती के मानी में ये इस्तेमाल होता है कि इस सारी बात के बाद भी अगर कोई अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो उसके लिए जो है वो दर्दनाक अजाब है। यहां पे मानी क्या है, اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے قانون کو توڑے گا، تو پھر اسے جو ہے وہ عذاب ملے گا. اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 95، اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ لوگ جو کہ شکار کی حالت میں، وہ لوگ جو احرام کی حالت میں عمدن شکار کریں گے، جان بوجھ کر شکار کریں گے، تو اس کا کفارہ بتایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو. لا تقتلوا الصید، شکار نہ کرو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. وانتم حرم کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ احرام پہنا ہوا ہے، حالت احرام میں ہو. دوسرے معنی ہیں، اس کے ساتھ ہی دوسرے معنی بھی ہیں، کہ حدود حرم کے اندر ہو. تو جب حرم کی باؤنڈری میں ہو تو اس وقت تم شکار جو ہے وہ نہیں کر سکتے. فمن قتلہ منکم متعمدن، اور تم میں سے جو کوئی جو ہے وہ شکار کرے گا، متعمدن عین میم دال، جان بوجھ کر کرنا. تو جو کوئی جو ہے وہ شکار کرے گا جان بوجھ کر، فجزا ان، بس بدلہ ہے اس کا. اب اس کا کیا کفارہ بتایا جا رہا ہے؟ مثل ما قتلا، ماند اس کے جو وہ مارے. تو جان جو جانور اس نے مارا ہو، اسی کے ہم مثل، من النعمی، جانور میں سے. نون عین میم جو ہے اس کے معنی ہے، یہ انعام کو کہتے ہیں، اور یہ اسم جنس ہے، یہ اسم جنس ہے، اور اس کے معنی ہے جیسے جو انعام، نعمان، یہ جمع ہے اس کی. اور آپ نے سورۃ الانعام میں جو ہے وہ آپ اس کے اس میں بھی اس کے بارے میں پڑھیں گی، اور آپ نے سورۃ المائدہ میں پڑھا تھا کہ انعام کہتے ہیں عربی زبان میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کو انعام کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی جان بوجھ کر جو ہے وہ شکار کر لے گا، تو فجزاؤن، تو اس کا بدلہ ہے مثلو، برابر، ماند ما قتلا، جو اس نے شکار کیا ہے، من النعمی، جانور میں سے. تو اب جو انہوں نے شکار کیا ہے، تو اسی طرح کا جو ہے وہ جانور ان کو کفارے کے طور پر دینا ہے. تو مساوی جانور سے مراد کیا ہے؟ کہ قد و قامت میں مساوی ہونا، قیمت میں مساوی ہونا نہیں ہے. مثلاً اگر کسی نے جو ہے ہرن کو قتل کیا ہے، تو اس کی مثل بکری ہے، گائے کی مثل نیل گائے ہے. اور اگر کسی جانور کا مثل نہ ملے، تو قیمت بطور فدیہ کے مکہ میں پہنچا دی جائے گی. تو یہ ہے مثل ما قتل من النعمی. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ جو شکار کیا ہے تو اس کی مثل جو دینا ہے، اس کا ہم پلہ، اسی طرح کا جانور جو دینا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یحکمو بہی ذو عدل منکم، فرمایا کہ یحکمو، حکم کریں، فیصلہ کریں، بہی اس کا، ذو عدل. ذو اصل میں زبان دو کے لیے آتا ہے، زو کہتے ہیں نا والا، تو زبان دو، نون یہاں سے گر چکا ہے، تو ذو دو، منکم تم میں سے. تو ذو عدل، عدل کرنے والے دو آدمی تم میں سے، جو معتبر لوگ ہیں نا، دو عادل آدمی، وہ اس کا فیصلہ کریں گے. ہدین، ہدین یعنی قربانی، نیاز، جو کفارے کے طور پر دینی ہے، اس کا فیصلہ دو عدل کرنے والے کریں گے. بالغ القاباتی، بالغ کا مطلب ہوتا ہے جو ہے پہنچانا، بلغا ہوتا ہے نا کہ پہنچانا، تو بالغ، پہنچا دینا، القاباتی، کعبہ میں. کعبہ کا جو لفظ ہے، اس کا روٹ ہے کاف، عین، با. تخنے کو کہتے ہیں، ہر ابری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو مربع نما ہو، لمبائی، چوڑائی، اونچائی میں برابر، تقریباً برابر، اس کو کہا جاتا ہے. جیسے خانہ کعبہ کو بھی کہتے ہیں. تو اس کا جو کفارہ ہے یا نذرانہ ہے، یہ کعبہ میں پہنچایا جائے گا. اور کفارۃ طعام مساکین، یا تو یہ کیا جائے گا، یا پھر اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. اور کفارہ طعام مساکین، یعنی چند مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے. تو کیا क्या बात पता चली, या तो वो जो जानवर है उसे जो है वो नजराने के तौर पर जो है वो काबा में पहुंचाया जाए, या उसके बराबर कीमत जो है वो मिसकीन को जो है खाना खिला दिया जाए, औ अदरु ज़ालिका सयामन, या फिर जो है वो इसके बकदर रोजे रखने होंगे। कितने रोजे रखने होंगे इसका फैसला भी दो आदमी, आदिल आदमी करेंगे, किस जानवर के मारने पर आदमी को कितने मिस्कीनों को खाना खिलाना चाहिए या कितने रोजे रखने चाहिए। तो ये सारा कुछ कफारा क्यों बताया जा रहा है, ले यजू का वबाल अमरे, ताकि वो अपने किए का मजा चखे। यजू का इसका रूट जाल वकाफ है और वबाल वबल से है, आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। बारिश के लिए जो है वो कुरान में 9 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, वाबिल इसका सबसे ऊंचा दर्जा है, और वोबा लाम के अंदर जो है शिद्दत कसरत तेजी पाई जाती है, जैसे मवेशी को लाठी से लगातार मारना, किसी चीज में शिद्दत और कसरत। और वाबिल शदीद किस्म की बारिश को कहते हैं जो पानी की कसरत शिद्दत तेजी की वजह से खसो खाशाक तक को बहा के ले जाए। तो अभी यहाँ पे क्या है, वबाल। वबाल के फिर मानी क्या है कि ये जो है ये सजा है, ये सजा है अमरे ही, ये जो है जो कुछ उसने किया था, तो उसके जो अमल है उसके जो उसने ज्यादती की थी अल्लाह ने, तो ये उसके अपने काम की सजा मुकरर की। अफल्लाहु अम्मा सलफ, पहले जो हो कुछ हो चुका उसे अल्लाह ने माफ कर दिया। वमन आदा, और अब कोई जो है वो इरादा करेगा, ऐन वदाल से है, अगर कोई दोबारा ये काम करेगा, फयंतकिमुल्लाहु मिन, तो अल्लाह इसे बदला लेगा। नून काफ मीन का मतलब होता है इंतकाम लेना, बदला लेना, तो अल्लाह इसे बदला लेगा। वल्लाहु अजीज इंतकाम, अल्लाह जो है गालिब है और बदला लेने की ताकत रखता है। तो यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह जो है वो अगर कोई ज्यादती करता है तो वो ज्यादती करके ये मत समझे कि उसको कोई पकड़ेगा नहीं, अल्लाह की पकड़ से फिर वो बच नहीं सकता, क्योंकि वो अजीजुन भी है गालिब भी है और जुन्तकाम इंतकाम लेने की ताकत रखने वाला है। फिर फरमाया उहिल्ला लकुम सैदुल बहरी व ताअमुहु मताअ लकुम वलिस्सय्यारा, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और इसका खाना हलाल कर दिया गया, जहां तुम ठहरो वहां भी उसे खा सकते हो और अपने काफिले के लिए ज्यादे राह भी बना सकते हो। तो सबसे पहली बात क्या बताई गई कि इजाजत दे दी गई, हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए, और तुम लकुम से मुराद कौन है, मोहरम भी जिसने एहराम बांधा हुआ है और जिसने एहराम नहीं बांधा हुआ, उन सबको क्या कहा जा रहा है, सईदुल बहरी समंदर का शिकार जो है वो तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। वह तामू और उसका खाना, तो इसके मानी क्या है कि जो एहराम पहनने वाला है, एहराम बांधने वाला जो मुहरिम है, वो सिर्फ खुश्की के जानवर का शिकार नहीं कर सकता, समंदर के शिकार की इजाजत दे दी गई। और इसकी वजह क्या है, मुफस्सरीन कहते हैं कि समंदर में बाज़ औक़ात ज़ादेरा खत्म हो जाता है और उस वक्त सिवाय समंदर के जानवरों के मछली के और कोई चीज नहीं रह जाती, तो अल्लाह ताला ने बहरी शिकार को हलाल कर दिया गया, एहराम की हालत में भी और बगैर एहराम की हालत में तो हलाल ही है। सईदुल बहरी समंदर का शिकार, तो सईदुल बहर से मुराद है जैसे मछली जिंदा पकड़ ली जाए। वह तामू, तामू जो है जैसे उस मछली को कहते हैं जो कि मुर्दा है, जैसे जो समंदर से बाहर पड़ी हुई है, तो वो मुराद है। वतामहू, तो मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे मुराद है कि समंदर का मुर्दार भी हलाल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे लिए दो मुर्दे और दो खून हलाल कर दिए गए। दो मुर्दे से मुराद नंबर एक मछली, नंबर दो टिड्डी, और दो खून से मुराद एक कलेजी और दूसरी तिल्ली है। तो समंदर के तमाम जानवरों का खाना जो है वो जायज है। फिर फरमाया कि मता अल्लाह कुम, कि ये जो है वो तुम भी खा सकते हो। वाली सैयारती, और सैयारा जो है इसके मानी है जो तुम्हारे काफले वाले हैं, जैसे सैर करना, चलना फिरना। तो जो वो लोग हैं ना काफले वाले, जो चल फिर रहे हैं, जो सफर में है मुसाफिर, ये उनके लिए जायज है। वह हुर्रे मा अलैकुम सैदुल बर्री, और तुम्हारे लिए खुश्की का जो शिकार है ये एहराम की हालत में हराम कर दिया गया। मा दुम तुम हुरुमा, जबकि तुम एहराम की हालत में हो। या इसके भी दो मानी है, मा दुम तुम हुरुमा, एक ये कि हुदूद हरम में हो, या फिर ये कि एहराम की हालत में हो। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैही तुहशरून, बस बचो उस अल्लाह की नाफरमानी से जिसकी पेशी में तुम सबको घेर कर हाजिर किया जाएगा। अब आप देख लीजिए कि तकवा है जो है वो सारे गुनाहों का इलाज और अल्लाह की नाफरमानी से बचने का जरिया, कि उस अल्लाह से डरो, अल्लज़ी इलैही तुहशरून, जिसकी नाफरमानी तुम करोगे और फिर तुम सबको घेर कर जो है वो अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा। इसके माने ये हैं कि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब सब लोगों को जमा करके अल्लाह के सामने जो है वो पेश किया जाएगा, तो फिर क्या बनेगी। तो यहाँ पर जो है वो डराया जा रहा है, और अकीदा आखिरत की याद दहानी जो है और उसका डर और खौफ जो है वो इंसान के अमाल को दुरुस्त कर देता है। फिर आयत नंबर 97 में अमनो अमान के, अमनो इत्मीनान के चार जराए बताए गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जालल्लाहुल काबतल बैतल हरामा क़ियामल लिन्नासी व शहरल हरामा वल हदिया वल कलाइद, के बेशक अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। जाला का मतलब है मुकर्रर किया, बनाया। किसको बनाया? सबसे पहले काबा का जिक्र है, अल काबतल बैतल हरामा, काबा जो के मोहतरम घर है, मकाने मोहतरम। अब आप देखें कि काबा के मुख्तलिफ नाम है, नंबर एक काबा, नंबर दो अल बैत मखसूस घर है, जैसे नंबर तीन बैतुल अतीक पुराना घर, शरीफ शराफत में जो है वो अपनी मिसाल आप, नंबर चार चार हरम। हरम के मानी क्या है कि मोहतरम के भी हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो है वो किसी पर हाथ उठाना, कत्ल करना जो है वो हराम है, और नंबर पांच बैतुल हराम या फिर बैतुल मुहर्रम, और फिर इसका एक और नाम है मस्जिदुल हराम, इज्जत व एहतराम वाली मस्जिद। तो ये खाना काबा के मुख्तलिफ नाम है, और यहाँ पे क्या नाम बताया जा रहा है, अलकाबतल बैतल हराम, मकाने मोहतरम काबा। ये क्या है, कियामल लिन्नासी, ये लोगों की इज्तमाई जिंदगी के कयाम का जरिया है। इसके माने ये हैं कि ये बियाबो गया वादी में काबा का वजूद मक्का और आसपास के लोगों के माश का जरिया है, क्योंकि हज और उमरा के लिए आने वाले लोगों को यहाँ पे जो है वो एक रिहाइश मिलती है, खाना मिलता है, दुनिया भर से चीजें खाने पीने की तिजारत की यहाँ पर जमा होती हैं, लोगों को अमन नसीब होता है, जबान और अदब को तरक्की, आपस में मामलात, आपस में रिश्ते नाते, तो इतना कुछ इनको जो है वो हज और उमरे के दिनों में मयसर आ जाता है कि साल भर का गुजारा काफी हो जाता है। तो बहुत से जो मुआशरती और सियासी फवायद है वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि लोगों ये जो अल्लाह का घर है ये क्या है, ये लोगों के इज्तमाही कयाम का जरिया है, इज्तमाही जिंदगी के कयाम का जरिया है। नंबर दो वशहर अल हराम, और हराम महीने, हराम महीने से मुराद 4 महीने, ज़िलक़ादा, ज़ुलहज्जा, मुहर्रम और रजब। तो इन 4 महीनों में भी लोगों को अमन नसीब होता था। फिर तीसरी चीज है वल हदिया, और हदिया से मुराद है जानवर जो कि वो अल्लाह के लिए जो है वो मुकर्रर कर देते थे, अल्लाह के लिए नजर मान लेते थे, और फिर अल्लाह के घर उन्हें जो थे वो लाते थे। और चौथी चीज है वल कलाइद, कलाइद जो है इसका रूट है काफ लाम दाल, और कलादा की जमा है कलाइद, मकालीद भी इसकी जमा है, गले के हार को कहते हैं, इसके मानी है कलायत के कि वो लोग ये करते थे कि जब जो है वो हज के लिए निकलते तो अपने गले में एक हार बतौर अलामत के डाल लेते ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये अल्लाह के घर की तरफ जा रहा है तो कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए, या फिर कुर्बानी के जानवरों के गले में इसी तरह हार डालते थे तो उसको कलायद कहते हैं। तो बताया कि ये कलायद भी कयाम अमन और सुकून की अलामत है। तो चार चीजें हैं जो लोगों के लिए कयाम अमन और सुकून की अलामत है। नंबर एक अल्लाह का घर काबा, नंबर दो ये हराम महीने जो चार हैं, नंबर तीन कुर्बानी के जानवर, और नंबर पांच जो है वल कलायद। कलायद से मुराद जो है वो गले में जो हार थे जानवरों के या उनके अपने गलों में। ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, ये सब कुछ अल्लाह ने जो है वो क्यों किया, कैसे इनसे तुम्हें अमन और इत्मीनान नसीब हुआ, ताकि तुम्हें पता चल जाए, لِتَعْلَمُوا ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमानों और जमीन के सब हालात से बाखबर है। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि ये जो अमन और अमान के ये जो जराए हैं ये दरअसल जमीनों आसमान की हर चीज को पूरा पूरा जानने वाले अल्लाह की तरफ से हैं। वो अल्लाह ही है जो ऐसा इंतजाम कर सकता है। और हकीकत यह है कि अल्लाह को जो है वो आसमानों और जमीन के सब हालात की खबर है। वअन्ना अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, और उसे हर चीज का इल्म है। तो यहाँ पे ना गौर फिक्र की दावत दी जा रही है कि बदअमनी के जमाने में अमन का नसीब हो जाना और अल्लाह के एक हुक्म के जरिए इंसानी जिंदगी को कितने फायदे मिलते हैं, कितने शोबों को जो है वो सुकून मिलता है। तो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी में तुम्हारा अपना भला भी है और सबका भला है अगर तुम इस पर गौर करो। एलमु अन्नल्लाह शदीदुल इकाबी व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तब इस एक आयत में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो एक तरफ खुशखबरी दी है और दूसरी तरफ डराया भी है कि अगर अल्लाह के हलाल और हराम के जो अहकामात हैं इस पर अमल करोगे तो क्या है कि जो पहले जो कुछ हो चुका, जो गलतियां हो गई, तो अन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और अगर तुम अमल नहीं करते, अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, तो बेशक अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। तो अहम बात क्या है, एलमू, ये तंबीह का जुमला है, ये तंबीह के लिए, डराने के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया कि जान लो कि ये जो शायर हैं, ये अमनो सुकून के जो जराए हैं या हलाल और हराम के जो अहकामात हैं इस पर अमल ना करने में फिर अल्लाह की बड़ी सख्त पकड़ है, और अमल करने के नतीजे में अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मा अलर रसूल इल्लल बलाग वल्लाहु यालमु मा तुबदूना वमा तक्तुमून। रसूल पर तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देने की जिम्मेदारी है, आगे तुम्हारे खुले और छुपे सब हालात का जानने वाला अल्लाह है। तो रसूल का काम क्या है कि सिर्फ बात तुम्हें पहुंचा दे और फिर उस पर अमल जो है वो करना या ना करना ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ जो है तुम जाहिर करते हो। ये आयत जो है ये बहुत डराने वाली है कि बाज़ औक़ात इंसान जब अल्लाह की नाफरमानी करता है दुनिया से वो छुप जाए, दुनिया से वो बच जाए, लेकिन अल्लाह से नहीं बच सकता। फिर फरमाया कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबका कसरतुल खबीस فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ। फरमाया उल्ला यस्तवी الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि पाक और नापाक बहरहाल यस्तवी मुसावी नहीं है, बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है। सीन वो या इसका रूट है कि ये चीजें यकसा नहीं है। और खबीस से मुराद जो है वो नापाक को कहते हैं, रद्दी, खराब और नापाक चीज को खबीस कहते हैं। और इसका ऑपोजिट है तय्यब। तय्यब जो है वो हर उम्दा, जय्यद और हलाल चीज को कहते हैं, पाक चीज को कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि खबीस और तय्यब जो हैं ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। मानी क्या है कि जो माल है, दौलत है, जो खबीस है और जो तैयब है, वो बराबर नहीं हो सकता। हलाल और हराम जो है वो एक जैसे नहीं हो सकते। इसी तरह अच्छे और बुरे इंसान भी एक जैसे नहीं हो सकते। आपने सूरत अल-बकरा की आयत 221 में पढ़ा था ना कि मुशरिक लोगों से निकाह ना करना, कि वो खबीस है। इसी तरह जो है वो ईमान लाने वाले और ईमान ना लाने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो हलाल हराम, पाक नापाक, अच्छे बुरे अमाल, ये नेक बद लोग जो हैं वो बराबर नहीं हो सकते। वलौ आजबा का, वलौ आजबा का, और तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों ना लगे। आजबा का उजब होता है ना, किसी चीज का बड़ा अजीब लगना, बड़ा अच्छा लगना, और वो तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों ना लगे। कसरतुल खबीसी, खबीस की कसरत। तो खबीस से मुराद क्या है? नापाक, रद्दी, खराब, वो कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, वो तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, ये बराबर नहीं है। फत्तकुल्लाह, पस अल्लाह से डरो। या उलिल अलबाबी लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए अकल रखने वालों। लाम बाबा इसका रूट है, ये मगज को कहते हैं, लुब दिमाग को कहते हैं। तो अलबाब कहते हैं अकलमंद लोगों को। तो कहा ए अकल रखने वालों, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम्हारी फलाह हो जाए। ये आयत बड़ी खूबसूरत आयत है जो कदर व कीमत का एक मायार पेश करती है। बाज़ औक़ात जो है, जैसे हलाल ज़राए से आप कुछ कमाई करते हैं तो चीज थोड़ी होती है, जैसे 100 रुपया मिला, लेकिन हराम ज़राए से जो ऊपर का आता है माल, इधर उधर से वो 1,000 मिल गए, तो वो जो 100 है ना, वो 1,000 से अच्छे हैं, क्योंकि 1,000 अल्लाह की नाफरमानी करके कमाए हैं और 100 जो है वो अल्लाह की अताअत के साथ है। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि नापाक 1,000 ही क्यों ना हो, और वो पाक, वो तैयब जो 100 हैं, वो उस 1,000 से अच्छे हैं। जैसे गिलाजत के एक ढेर से इतर का एक कतरा ज्यादा कीमती है, इसी तरह पेशाब का एक भरा हुआ बर्तन हो तो उसके मुकाबले में पाक पानी जो है वो एक घूंट ही क्यों ना हो, वो ज्यादा बेहतर है। तो जाहिरी तौर पर हलाल तैयब कितना ही हकीर हो, कलील हो, वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अच्छा है। हराम की बजाय हराम कितना ही कसीर और शानदार क्यों ना हो। जैसे बाज लोगों के पास अच्छी गाड़ी, बहुत बड़ा सा घर, और बड़ी उनका जो है वो वे ऑफ लिविंग है, स्टेटस है, नेम ब्रांड उनके पास चीजें हैं, खिलौने हैं, मर्सिडीज और बहुत सी चीजें। तो जब कोई चीज किसी की देखें तो ये जरूर सोचें कि ये आया कहाँ से, इसका जरिया क्या है, ये खबीस है या तैयब है। कहा कि पस ऐ लोगों जो अकल रखते हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, उम्मीद है कि तुम्हें फला नसीब होगी। आयत नंबर 101 जो है, यहाँ पर जो है वो एक बहुत अहम जो है वो उसूल देती है कि गैर जरूरी सवालों से बचा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम तसूकुम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तसअलू ना सवाल करो, अन अशिया चीजों के बारे में, इन तुब्द लकुम अगर वो तुम पर खोल दी जाए। तुब्दला जो है इसका रूट है बा दाल वो, जाहिर होना, कि अगर वो तुम पर जाहिर कर दी जाए, तसूकुम तो तुम्हें बुरी लगेंगी। सू जो है सीन वो हमजा जो है इसका रूट है, और इसके मानी है कि जैसे किसी चीज का जो है वो बुरा लगना। तो अगर वो चीज जो है वो तुम्हें बता दी जाए तो तुम्हें बुरी लगेगी। व इन तसअलू अनहा, और अगर तुमने सवाल किया और अगर तुम पूछोगे, अनहा उस चीज के बारे में, ही ना युनज़्ज़लुल कुरानु, जब कुरान नाजिल हो रहा हो, तुबदलकुम तो तुम पर खोल दी जाएगी। अफल्लाहु अनहा, अब तक जो तुमने सवाल किए, जो तुम पूछते रहे, उसे तो अल्लाह ने माफ कर दिया। वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग अजीबो गरीब सवाल पूछा करते, और ना जिनकी दीन के मामले में जरूरत होती, ना दुनिया के मामले। मसलन एक दफा एक शख्स ने भरे मजमे में आपसे पूछा, मेरा असली बाप कौन है। फिर जो है वो एक दफा जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उन्हें बताया कि हज जो है वो फर्ज कर दिया गया, तो ये थे अकरा बिन हाबिस। उन्होंने पूछा क्या हर हज क्या हज हर साल फर्ज है? आप चुप रहे। अकरा बिन आबिस रजी अल्लाह ने दूसरी दफा पूछा, आप फिर भी खामोश रहे, आपने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने तीसरी दफा जो है वो पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उस वक्त अताब के साथ तंबी की कि अगर मैं तुम्हारे जवाब में ये कह देता कि हाँ हर साल हज फर्ज है तो ऐसा हो जाता और फिर तुम इसको पूरा ना कर सकते। तो फिर इसलिए आपने फरमाया कि जिन चीजों के मुतालिक मैं तुम्हें कोई हुक्म ना दूं उनको उसी तरह रहने दो और उनमें खोद खुरेद करके सवालात ना पूछो। आपने फरमाया तुमसे पहले बाज़ उम्मतें इसी कसरत सवाल के जरिए हिलाक हो चुकी कि जो चीजें अल्लाह और इसके रसूल ने फर्ज नहीं की थी सवाल कर करके इनको उन्होंने अपने ऊपर फर्ज करवा लिया और फिर उसकी खिलाफ फर्जी में मुब्तिला हो गए। तो इससे क्या बात पता चलती है कि बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, खाम खा जो है वो हर बात की खोज नहीं लगानी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के हक में सबसे बड़ा मुजरिम वो शख्स है जिसने किसी ऐसी चीज के मुतालिक सवाल छेड़ा जो लोगों पर हराम ना की गई हो और फिर महज इसके सवाल छेड़ने की वजह से वो हराम कर दी गई। फिर आपने एक मौके पे फरमाया, अल्लाह ने कुछ फराइज तुम पर आयद किए हैं, इन्हें जाया ना करो। कुछ चीजों को हराम किया है, इनके पास ना फटको। कुछ हुदूद मुकर्रर की हैं, इनसे तजावुज ना करो। और कुछ चीजों के मुतालिक खामोशी इख्तियार की है बगैर इसके कि उसे भूल लाहक हुई हो, लिहाजा इनकी खोज ना लगाओ। तो इससे क्या बात पता चलती है कि खामखा तजस्सुस करना या सवाल करना, जैसे बनी इसराइल ने गाय जिबा करने के बारे में सवाल पूछा था तो बार बार के सवालों के जरिए जो है वो मुश्किल में पड़ गए कि उम्र, रंग, कैफियत। हालांकि अगर जब अल्लाह ने कहा था गाय जिबा कर दो, वो जैसे भी गाय जिबा कर देते वो आजाद थे। तो जितने सवाल किए उतनी पाबंदी बढ़ती चली गई। तो ये नुकसान होता है ज्यादा सवाल करने का। बाद स्टूडेंट्स उस्ताद से बहुत सवाल पूछते हैं, जितना वो सवाल पूछते जाते हैं ये भी आएगा, ये भी आएगा, ऐसे आएगा, उस्ताद कहता जाता है हाँ ये भी होगा। इसी तरह बाद औरतें शौहर से पूछती हैं, अच्छा तो क्या पकाऊं, कैसे पकाऊं, ऐसे करूं, वैसे करूं, और जितना पूछती जाती हैं फिर ऐसे करना, फिर वैसे करना, है ना। इसी तरह बाज़ औक़ात बच्चे वालदैन से बहुत सवाल पूछते हैं गैर जरूरी। तो नतीजा क्या निकलता है कि वालदैन की तरफ से बच्चों पर पाबंदी जो है वो बढ़ती चली जाती है या फिर मुश्किलात और उलझन जो है वो उसमें इजाफा होता चला जाता है। तो यहां पर भी ये बात फरमाई कि अब तक जो कुछ तुमने किया उसको तो अल्लाह ने माफ कर दिया क्योंकि वो दरगुजर करने वाला और गुर्दबार है। कौमुम मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले एक ग्रोह ने इसी किस्म के सवालात किए थे। कौन लोग थे ये जरा लिखकर बताएं। ये थे बनी इसराइल के लोग जिन्होंने गाय के बारे में जो है वो सवाल पूछा था। तुम असबहू बिहा काफिरीन, फिर वो इन्हीं बातों की वजह से जो है वो कुफर में मुब्तिला हो गए। असबहू का मतलब होता है हालत में तब्दीली होना। तो अपनी यही सवाल करने की वजह से अमली तौर पर वो नाफरमान बन गए। अब आप देखें कि अहले मक्का का और लोगों का, क्योंकि सहाबा जो कि मुहाजिर भी थे अंसार भी थे वो मक्का ही के रहने वाले थे ना, अब जब मुसलमान हो गए तो उनके जहन में ये सवाल था कि ये बहीरा, साहिबा, वसीला, हाम जो है इसकी क्या हकीकत है, क्योंकि इस्लाम आने से पहले इन लोगों ने कुछ जानवरों को जो अल्लाह ने हलाल किए थे, मुशरिकीन ने मनघड़ तौर पर ऐसी रस्में इजाद की, ऐसी बिदतें इजाद की कि उनको अपने ऊपर जो है वो हराम कर लिया। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम, कि नहीं मुकर्रर किया है अल्लाह ने मिन बहीरा कोई भी बहीरा। बहीरा जो है बा हा रा को कहते हैं और बहीरा जो है उस ऊंटनी को कहते थे जो 5 दफा बच्चे जन चुकी हो और आखिरी बार इसके यहाँ नर बच्चा पैदा हो, तो उसका कान चीर कर उसे आजाद छोड़ देते थे। तो बहर समंदर को कहते हैं ना, बड़ा वसी होता है, तो कान चीरते थे और बहुत ज्यादा चीर देते थे। तो बहीरा से जो है जैसे वुस्सत के मानी पाए जाते हैं कि अल्लाह ने कोई बहीरा मुकर्रर नहीं किया। तो ये जानवर ऊंटनी का कान चीर कर उसको छोड़ देते थे, ना उस पर कोई सवारी कर सकता था, ना दूध पी सकता था, ना उसको जिबा करके उसका गोश्त खाया जा सकता था, ना उसको किसी जानवर जो है उससे ना कोई सामान वगैरह उठवाया जा सकता था। तो उसको छोड़ देते थे कि वो जहां चाहे चरे चुगे। दूसरा था वला साहिबातिन, और ना ही कोई जो है वो साइबा। साइबा जो है इसका रूट है सीन या बा, और इसके भी मानी है वो ऊंट या ऊंटनी, जिसे मन्नत पूरा करने के लिए या किसी बीमारी से शफा पाने के लिए वो शुक्राने के तौर पर पुण कर देते थे, तो उसको कहते हैं साइबा। तीसरा है वाला वसीलतन। वसीला जो है ये भी वो स्वाद लाम से है, और इसके मानी है कि अगर बकरी का पहला बच्चा नर होता तो अल्लाह के नाम पर जिबा कर दिया जाता, और अगर वो पहली बार जो है वो मादा पैदा करती तो उसे अपने लिए रख लिया जाता। तो इस तरह ये भी एक इनकी जो है वो मुशरिकाना रस्म थी कि जानवरों को अपने बुतों के नाम पे छोड़ते थे। वला हामिन, हामिन जो है इसका रूट है हा वो मीम, और ये ऊंट होता था कि ऊंट का पोता अगर सवारी देने के काबिल होता तो बूढ़े ऊंट को आजाद छोड़ देते थे। तो यहाँ पे अब उनका सवाल ये था कि ये जो हम करते हैं मुशरिकाना तौर तरीके, बहीरा, साइबा, वसीला, हाम, जिनकी असल कहानी क्या थी कि ये जानवर जो है वो अपने बुतों के नाम पर पुन करके छोड़ देते थे। जमाना जाहिलियत में अहले अरब की जो है ये रस्में थी, ये तौर तरीके थे, और खुद ही उन्होंने मुख्तलिफ नाम रखे हुए थे। अब पूछते थे कि इनकी हकीकत क्या है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने इसमें से कुछ भी मुकर्रर नहीं किया। वलाकिन अल्लज़ीन कफरू यफ्तरून अल्लाहिल कज़िब, ये काफिर अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाते हैं। वह अक्सर हमला याकिलून, और इनमें से अक्सर बेअकल है, कोई अकल नहीं है। और आप देखें कि आज आपके यहाँ, आपके खानदान में, आपकी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी रस्में हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं। जैसे 3 दिन ही सोग है ना, सिर्फ एक औरत के लिए है कि शोहर के फौत होने के बाद 4 माह और 10 दिन, लेकिन वफात के बाद लोग क्या करते हैं, आमतौर पे बाप फौत हो गया, माँ फौत हो गई, औलाद में से कोई या बहुत ही कोई करीबी, तो कहते हैं कि आज 7वां है, 10वां है, 40वां है, फिर पता नहीं कितनी किस्म का फल मनों के हिसाब से, और फिर कपड़े और जेवर और देगे, और फिर अगर कोई जो है मेहमानों को अच्छा सा खाना ना दे तो कहते हैं लो जी इनका माँ बाप मर गया है, और इन्होंने जो है ना वो उन्होंने दाल पर जो है वो तरखा दिया है, या और इस तरह की बहुत सी बातें जो है वो गैर इस्लामी रस्में जो है वो दीन समझकर उन पर अमल किया जाता है। तो कहा कि इनको अकल नहीं है कि अल्लाह के नाम पर ये झूठी बातें घड़ते हैं। वाइज़ा क़ीला लहुम तालो, और जब इनसे कहा जाता है कि आओ, ताल जो है इसका रूट है ऐन लाम वो, बुलंदी के लिए होता है ये लफ्ज़, जैसे अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ताला, तो अल्लाह आला है, तो तालो का मतलब होता है किसी बुलंद मकसद के लिए बुलाना। तो मानी क्या है कि जब इनसे कहा जाता है कि आओ उस कानून की तरफ, इला मा अंजल अल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया है, व इला रसूली, और रसूल की तरफ यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ, कालू कहते हैं हसबुना मा वजदना अलैहि आबाना, तो जवाब देते हैं कि हमारे लिए तो बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। तो क्या कहते हैं, बस वही करेंगे तौर तरीके और रस्में जो हमारे बाप दादा करते रहे, कुरान की तरफ, तालीम की तरफ, इस्लाम की तरफ आते ही नहीं, कैसा जुल्म है। तो दरअसल यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो शिर्क है ना, ये अबाओ अजदाद की अंधी पैरवी का नाम है, कि लोग अबाओ अजदाद की ऐसी अंधी पैरवी करते हैं कि इस सूरत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुकाबले में अपने अबाओ अजदाद की रस्मों को तरजीह देते हैं। और लोग ऐसे ही कहते हैं कि बस हमारे खानदान में ऐसा होता है कि बरसी मनाई जाती है, फलां पीर के उस पर देग चढ़ाई जाती है, या फलां जो है हमारे यहाँ ये किया जाता है, वो किया जाता है, और दीन का हिस्सा समझकर उसको नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर कर दिया जाता है। ना मालूम करते हैं कि अकीदे की हकीकत क्या है, अमल की सेहत क्या है, कि किताबो सुन्नत से कोई दलील ही सामने आए, तो इस तरह लोग गुमराही में बढ़ते चले जाते हैं। फरमाया अवलौ काना आबाहुम ला यालमून शैअ वला यहतदून। अब यहाँ पे दो बातें बताई जा रही हैं कि क्या ये बाप दादा की तकलीद ही करते चले जाएंगे, और दो बातें कहीं, नंबर एक ला यालमून शैअ, कि बाप दादा के पास कुछ इल्म नहीं था, कुछ नहीं वो जानते थे, जाहिल, वला यहतदून, और सही रास्ते की उन्हें खबर ही नहीं थी, उन्हें कोई हदायत नहीं थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अलैकुम अनफुसकुम के मानी क्या है कि अपनी फिक्र करो, अपने नफ्स को अपने जिम्मे ले लो। इसके माने ये हैं कि हर आदमी हर वक्त ये देखता रहे कि जो है वो खुद उसके जो है वो अमाल कैसे हैं, वो अल्लाह की अताअत कर रहा है या नहीं। उसको अपने नफ्स की इसलाह करनी चाहिए, ये नहीं फिक्र करनी चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है। अपने अकायद, इखलाक, किरदार, अमाल कुरान और सुन्नत के सांचे में ढालने चाहिए। बाज लोग ये हर वक्त का उनका ये मशगला होता है, फलां ये करता है, फलां ऐसा है, फलां का इखलाक ऐसा है। तो पहली बात क्या है कि अपने आप को देखो कि आप खुद क्या कर रहे हो, क्या अल्लाह की अताअत कर रहे हो। तो आप अपना मुहासबा कीजिए, अलैकुम अनफुसकुम, तुम पर अपने नफ्स की जिम्मेदारी है। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम, फिर फरमाया ला यदुर्रुकुम कि नहीं नुकसान करेगा तुम्हारा मन दल्ला जो गुमराह हुआ, इज़ा तदैतुम जब तुम हदायत पर हो, जब तुम सही रास्ते पर हो, तो कोई दूसरा जो है ना जो गुमराही पर है वो तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। तो खुद सीधे रास्ते पर चलो। लेकिन इस आयत का ये मतलब भी आप याद रखें कि इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों की फिक्र छोड़कर बस अपनी ही फिक्र करें। इस आयत के सिलसिले में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने एक मौके पर खुतबा दिया, बड़ी खूबसूरत बात कही कि लोगों तुम इस आयत को पढ़ते हो और इसकी गलत तावील करते हो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जब लोगों का हाल ये हो जाए कि वो बुराई को देखें और उसे बदलने की कोशिश ना करें, जालिम को जुल्म करते हुए पाएं और उसका हाथ ना पकड़ें, तो बईद नहीं कि अल्लाह अपने अजाब में सबको लपेट ले। खुदा की कसम तुमको लाजिम है कि भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, वरना अल्लाह तुम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देगा जो तुम में सबसे बदतर होंगे और वो तुमको सख्त तकलीफें पहुंचाएंगे। फिर तुम्हारे नेक लोग अल्लाह से दुआएं मांगेंगे मगर वो कबूल ना होंगी। तो इससे क्या बात पता चलती है कि पहली बात यह है कि अपनी इसलाह की फिक्र करनी चाहिए, अपने नफ्स की इसलाह, अपने अकीदे अमल के बारे में मोहतात होना चाहिए कि वो खराब ना हो, और अपने आप अपने चंद फुट के इंसान पर इस्लाम को गालिब करना चाहिए। और दूसरी बात अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, उसका फरीजा सर अंजाम देना चाहिए। इस आयत से ये गलत फहमी नहीं लेनी चाहिए कि बस अपनी इसलाह करनी है और बिगड़े हुए लोगों की इसलाह के लिए कुछ नहीं करना, तो वो भी करना है, अपनी कुव्वत, अपने इल्म, अपनी इस्तादात के मुताबिक अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाना है। लेकिन नंबर वन अपने आप को ठीक करने की फिक्र करनी है। इल्लाही मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, अल्लाह ही की तरफ तुम्हें लौटना है, जमीअन सबको, तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। फयुनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें बता देगा, बिमा कुंतुम तअमलून कि तुम क्या करते रहे। मेरी प्यारी बहनों, ये आयत बहुत ही डराने वाली है कि फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह जरूर बताएगा कि तुमने दुनिया में क्या किया, कितने बद किरदार थे, झूठे थे, मुनाफिक थे, और जो है वो अमल नहीं करते थे, कैसे कैसे अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाते थे। फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी सब बद अमलियां जो है वो तुम्हारे सामने खोल कर रख देगा। आयत नंबर 106 से लेकर 108 तक, इसमें जो है वो एक खास हुक्म बयान किया गया है और उसकी रूह ये है कि किसी का माल हकदारों तक पहुंचाना ये एक इमानत है। नंबर दो, उसमें अदल किया जाए, रिश्तेदारी और कराबत का लिहाज ना रखा जाए। नंबर तीन, हर बात जो है ना ये अल्लाह की गवाही है, यानी कि अल्लाह जो है वो देखता है और अल्लाह के इल्म में है, तो इसलिए जो गवाही है ना इस सिलसिले में जो है वो मोहतात होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस सिलसिले में एक वाकया है कि बनू सहम का एक आदमी तमीमदारी और अदी के साथ सफर पर निकला। ये दो लोग थे, ये दोनों गैर मुस्लिम थे और उनके साथ ये आदमी सफर पर निकला और ये सहमी एक जगह मर गया जहां कोई मुसलमान ना था। तमीमदारी और अदी ये इसका परका लेकर आए तो सहमी के वारसों ने इसमें एक प्याला ना पाया जो चांदी का था और सोने का जो है वो सोने से जो है वो ऊपर उसके जो है वो नक्शो निगार बने हुए थे, मुलम्मा कारी की भी थी। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دو آدمی تھے تمیم اور عدی ان سے قسم کھانے کو کہا اور وہ قسم کھا گئے کہ پیالہ ان کے پاس نہیں. پھر وہ پیالہ بازار مکہ کا جو بازار تھا وہاں سے مل گیا کیونکہ انہوں نے وہاں بیچ دیا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمیم داری اور عدی سے خریدا ہے مکہ میں جو بازار والے تھے انہوں نے کہا انہوں نے بیچا ہے. اب سامی کے وارثوں نے جو ہے اس میں سے دو لوگ کھڑے ہوئے اور اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے گواہی دی کہ یہ پیالہ ہمارے ہی آدمی کا ہے اور یہ کہ ہماری گواہی ان دونوں سے زیادہ سچی ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی, یہ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. آپ دیکھیں بار بار ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ جگایا جا رہا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, شہادت و بینکم, شہادت کہتے ہیں گواہی کو, تو بینکم درمیان تمہارے, کہ تمہارے درمیان جو گواہی کب, اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی کو جو ہے وہ موت آ جائے. تو جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے, حین الوصیتی, اور وہ وصیت کر رہا ہو, تو اس کے لیے جو ہے وہ گواہی کا, شہادت کا نصاب کیا ہے.